चलने के बाद में एक जगह मैं बैठ गया और इन लोगों को बतला रहा था जो हमारे साथ में ये थे, और ललिता जी थी पीछे से, मैं बतला रहा था भाई अनर्थ किसको करते और अपराध किसको करते, इन लोगों को बतला रहा था ये अनर्थ था। पहले अर्थ ठीक हो, अर्थ को ठीक हो, आपके यहाँ बिजनेस में अर्थ का आगम हो रहा है, ठीक ठीक से अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों हंस क्या हो रहे हैं, अर्थ आ रहा है कि नहीं,
बैलेंस शीट क्या बनता है, बैलेंस शीट क्या बनता है,
कम आया ना तो आपका ये लक्षण है कि आपका भजन हो रहा है, कुछ गया भी आपके यहाँ से, गया नहीं, मैं गया नहीं, यहाँ इसमें हुआ फ्रैक्चर हुआ और वो गया नहीं। अर्थ क्या है पहले समझना चाहिए, जिसके लिए जो अभिलाषा है वो अर्थ है। आप दुकान कर रहे हैं, घड़ी तो नहीं कहेंगे ना, शाम को रोकड़ मिलाएंगे जी हमको कितना लाभ है, तो ये अर्थ का बात। और जो ये नहीं चाहता है, जो स्वर्ग चाहता है उसके लिए अर्थ क्या है, स्वर्ग है। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए मोक्ष ही अर्थ है। जो इसको भी नहीं चाह करके राधा कृष्ण का प्रेम चाहता है उसके लिए वही अर्थ। अपराध किसको कहते हैं, रात माने होता है राधा जी की वृत्ति, उनकी वृत्ति क्या है, कृष्ण को सब प्रकार से सुख पहुंचाना, उनके नाम से फिर ये आराधना शब्द है। अप माने घट जाता है, नष्ट हो जाता है, अपराध, अराध माने सेवा की वृत्ति, राधिका जैसी वृत्ति जब खत्म हो जाती है जिस क्रिया से, अप माने क्या, अपगत होना, नष्ट होना, दूर हो जाना, क्या दूर होना, राधा जी की जो भावना है कृष्ण की के प्रति उसको आराधना कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। वो भाव जिसे घट जाए, नष्ट हो जाए, उस चीज को कहते हैं अपराध। अब बड़े प्रेम से हम लोग ये बात कर रहे थे, इनको समझा रहे थे, उदाहरण के साथ में समझा रहा, और एक महिला आई, कुछ देर तक बड़ी शांति से देखती रही, सुन रही। हमने कहा जी आज बहुत दिनों के बाद एक श्रद्धालु महिला मिल पाए, और थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे सहलाती सहमती हुई, धीरे धीरे क्या करूं ना करूं करते करते आकर के बैठी और सुनने ली। जब तक मैं कह रहा, जब हमारा कहना खत्म हुआ, मैं चलने को अब था, जब चलो चलें, तो महिला ने एक प्रश्न किया। मैंने सोचा जैसे ये प्रश्न भक्ति के संबंध में करेगी, तो उसने प्रश्न किया, महाराज जी गुरु जी हमको नींद ही नहीं 6 महीने से आ रही, ऐसी कोई उपाय कर दें, कृपा कर दीजिए कि हमको नींद आ रही, हमको 6 महीने से नींद ही नहीं आई। तो मैंने देखा जैसे देखो हम लोग समझ रहे थे कि कितनी श्रद्धालु है और कुछ भगवान की बात चर्चा चलाएगी, तो उसने कुछ भी नहीं सुना, जो हमने कहा वो एक शब्द भी नहीं सुना। अब उसको वहीं से चिंता लगी है, गजबज भरा हुआ है, वो चीज़ें नहीं आई, केवल नींद कैसे आए। मैंने कहा कि भाई बहुत सस्ता नुस्खा है, वो क्या, हम शुभानंद जी को भेज देंगे, तुमको भागवत सुनाएगा और 1 से 3 में जरूर तुमको, या कोई भी व्यक्ति जहाँ तत्व की बात सुनाएगा, आदमी धैर्य नहीं डाले, सो जाए। एक राजा ने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, और नहीं तो अकाजी आधा राज्य दे देंगे, हमको दो चार वर्षों से नींद नहीं है। और उसने कहा था आधा राज्य हम दे देंगे यदि हमको कोई सुला देगा। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर सब आए, हार गए। एक बूढ़ा आया जैसे हम आपको सुला, राज्य आप पीछे देंगे, पहले आप हमारी बात सुनिए। मैं आपके यहाँ भागवत का अनुष्ठान 7 दिन का करता हूँ, इसके अनुष्ठान से इतना आपको होगा कि आपकी नींद आ जाए। भागवत आरम्भ किया, तत्व की बात, जीव भगवान का अंश है, भगवान को भूल करके इस संसार में आया है। अभी तत्व की बात बतला रहा था ना, और सब लोगों के आंखों पर ऐसे अब धीरे धीरे हो रहा, सब लोग सुने जा रहे हैं। तत्व की बातें जिसके हृदय में अनर्थ है रोक नहीं सकता। हम भी जब मैं पहले आया तो वह अपने को श्रद्धालु समझता था, किंतु हमारे नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जी थे, मधुसूदन महाराज बड़ी भागवत के पंडित, बहुत धुरंधर पंडित भी थे, बहुत लोग सुनते थे। और जब वो आरंभ करते थे तो हमको इतनी नींद आती थी जो मैं कह नहीं सकता। तो ये तत्व उस समय में रुचि नहीं है, जिस काम में रुचि नहीं है उसमें जरूर सोएगा। आप लोग हरी कथा में रुचि नहीं है, जरूर नींद आएगी। मैं जानता हूँ कि जैसे वो यदि सुनती ना भागवत की कथा, वो जरूर उसको नींद आई जाए। तो वो पंडित आया, बोला जैसे भागवत का अनुष्ठान करेंगे, और भागवत का अनुष्ठान किया। पहले दिन तो किसी प्रकार से वो रहा, और दूसरे दिन जब और तत्व की बात आई, सृष्टि की बात आई, इसमें लोगों की साधारण से रुचि नहीं रहती, और धीरे 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 वो राजा एकदम सो गया। जब उठा जब उसकी कथा समाप्त हो गई तो उसने ऐलान कर दिया जी महाराज आपकी शक्ति बहुत है, भागवत में बड़ी भारी शक्ति है।
अच्छे
आज हद तक हमने इतना रुपया खर्चा किया, सब कुछ किया, दरबार गया, आज आपकी कथा में हमने शक्ति देखी। लोग कहते हैं कि भागवत अच्छी थी, भागवत है, आज हम सुनी जाए। और रुचि जिस काम में नहीं होगी उसमें, और जिस रुचि रहेगी वो ऐसा उसको सुनेगा जो सुनते ही आनंद आ जाएगा, उसमें रुचि आने लग जाएगी, और सुनूं और सुनूं और सुनूं। परीक्षित महाराज जी को तो नींद नहीं आई, सुखदेव गोस्वामी जैसे तत्वज्ञानी, और वो कह रहे हैं उसमें बीच बीच में कुछ कथाएं भी जोड़ते हैं। ये साधारण लोग थे तो वहां पर कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी, बीच बीच में ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, वो अजामिल की बातें, चित्रकेतु महाराज की बातें, फिर दशम स्कंद की बातें, फिर तत्वों में ले गए एकादश और द्वादश, एकदम गंभीर तत्व, उसमें भी कहीं कहीं कथाएं कुछ जोड़ी, और लेकर के लोगों की रुचि जिसमें हो, और इन सबको कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नियां थी याज्ञवल्क जी। याज्ञवल्क कौन थे, कौन थे? राजा जनक के गुरु एक तरह से, और ब्रह्मज्ञानी थे, अनुभूति संपन्न, अनुभूति वाले, ब्रह्म की अनुभूति थी। ये याज्ञवल्क जी इत्यादि सनक सनंदन सनंदन सनातन इत्यादि के समकक्ष कहलाते हैं, जैसे कभी हवि अंतरिक्ष इत्यादि हैं, ऐसे समकक्ष इन लोगों से भी। याज्ञवल्क जी की दो स्त्रियां थी, एक का नाम कात्यायनी और दूसरी का नाम मैत्रेयी। मैत्रेयी दोनों विदुषी थी, विदुषी मैंने क्या, विदुषी मैंने चरित्र, अच्छा विद्या से विदुषी हुआ है, विद धातु से अतः विद्वान, वेदों के मर्मज्ञ थी, शास्त्रों के मर्मज्ञ थी, जिसमें मैत्रेयी भी और बड़ी हुई थी, कात्यायनी से भी अधिक। जब ये 60-70 वर्ष के हो गए तो दोनों अपनी पत्नियों को एक जगह में बैठा कर बड़े प्रेम से बोले, ये देखो तुम लोगों के साथ में हमने 60-70 वर्ष तक, मैंने उस समय उम्र काफ़ी होती थी और हजारों वर्ष की, तो उस समय मान ले कि 10,000 वर्ष के जब हो गए होंगे तब कहे होंगे, हमने तो उस समय में लोग 7,000-70,000 वर्ष 80,000 वर्ष तपस्या करते थे और जीवन की आयु तो बहुत लंबी होती। तो उन्होंने अपने आधी उम्र समाप्त हो जाने के बाद में उन दोनों को बुलाया और बुला करके बोली, ये देखो तुम्हारे साथ में हमने बहुत अच्छी तरह से जीवन बिताए हैं और तुम लोगों ने हमारी ऐसी सेवा की जो हमारे भगवत उपासना में कोई कष्ट नहीं है, बाधा नहीं है, बहुत तरह से तुम लोगों ने सेवा की, मैं उसका आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज तक हमको जो कुछ दक्षिणा में मिली और जो कुछ हमारे पास में अर्थ संपत्ति रुपया पैसा आया, धन संपत्ति आई, गायें हैं लाखों गायें उनके पास में, इन सब का बंटवारा करके दो भाग करके तुम लोगों को दे, और तुम्हारे जो पुत्र हैं कन्याएं हैं वो तुम्हारे पास में रहेंगे और रहने के लिए हमारी दो जो मकान हैं घर हैं वो तुम लोगों को दे, उसमें तुम अपने बच्चों के साथ में रहो और ये जेवरात अलंकार और रुपये पैसे ये जो कुछ हैं ये सब बंटवारा कर देता हूँ और तुम लोग सुख से रहो और मुझे आदेश दो कि अब मैं वो क्या होता है वानप्रस्थ में अब मैं जाकर कुछ उपासना। बड़ी वाली जो थी कात्यायनी वो बड़ी प्रसन्न हुई, बोली तो आप जो कह रहे हैं आप हमारे पति हैं तो आपकी इच्छा में इच्छा मिलाना ही हमारा कर्तव्य है, इसलिए यदि आप ऐसा उचित समझते हैं तो लड़के और बाल बच्चे हो ही गए हैं और धन संपत्ति भी सारी छोड़ रहे हैं, मकान भी छोड़ रहे हैं, अलंकार इत्यादि सब दे ही रहे हैं, बच्चों के साथ में हम इनका देख सुन करके सब कर लेंगे और हम लोग रहेंगे, आप जाइए भजन, हमको कोई आपत्ति नहीं। बड़े खुश हुए, मुझे ठीक है तुम्हारी जैसी सहधर्म भी चाहिए। और दूसरी मैत्रेयी बोली, ठीक है हम भी राजी हैं किंतु दो प्रश्नों का उत्तर हमको आपको देना पड़ेगा। एक प्रश्न है ये, आपने जो कुछ दिया हमें, पुत्र दिया, संपत्ति दिया, घर बार धन संपत्ति सब कुछ रहने के लिए हमें दे दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका बाण प्रस्थाने वाला है तो ये मत सुनिए हमारी बात, दरखास्त बैठिए तो ऐसे आ रहा है समझ में मेरी बात, कोई खड़ी तो नहीं बोल रहा हूँ। तो मैत्रेयी बोली, एक प्रश्न है ये बतलाइए कि आपने हमको जो पुत्र दिया, कन्या दी, धन संपत्ति दे दी, गायें दे दी, जीवन भर के लिए हमें दी, तो इससे कोई भी परिवार कोई भी व्यक्ति सुखी रह सकता है या नहीं, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या मैं इसके द्वारा जो कुछ आपने दिया है मैं इसे सुखी रह सकती हूँ या नहीं? अब तो उनके प्रसन्नता का पारावार नहीं, ये पत्नी हो तो ऐसी समझ बूझ करके कोई काम। उन्होंने कहा, जो देखो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन तुमने कृतार्थ कर दिया, जो ऐसी धर्मांगनी क्या सधर्मिणी और धर्म पत्नी है, ऐसा प्रश्न करना सबके लिए संभव पर नहीं है। देखो मैं तुमको बतलाता हूँ, जो कुछ मैंने दिया ये सुख का कारण यदि होता तो मैं ही इसको लेकर के नहीं रहता। बात ठीक है ना? यदि मैं इसे सुखी रहता है, जो कुछ मैंने तुमको दिया है, तो मुझको इसे सुखी होना चाहिए था, किंतु मैं इसे सुखी नहीं हूँ, तो तुमको कैसे कह दूँ कि मैं सुखी रह सकता हूँ? संभव है? बेटा ही सुख का कारण है या कन्या या धन और अलंकार ही या बड़ी हवेली राजभवन, ये सुख का कारण है न क्या कारण है? इसे कोई भी सुखी नहीं रह सकता। बेटे का के प्रति जो हमारा मोह आपने जो बेटा दिया, ठीक है, ये बड़ा होकर के मेरी रक्षा करेगा, हो सकता है, नहीं भी कर सकता, किंतु उससे ममता स्नेह से हमारा कुछ आता जाता नहीं, ये बंधन है, ये बंधन है। इसे हमको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, इसलिए भी सुख का कारण नहीं। आपने बगीचे दिए हमें फले फलों से युक्त, हम आम के पेड़ की रक्षा करते हैं, किस लिए? यदि आम का पेड़ छाया और फल न दे तो करेंगे? एक पेड़ है जो चिंतामणि देता है, जैसा होता है ना सोना उगलता है, तो क्या करेंगे? सब को छोड़ करके उसी सोने उगलने वाले पेड़ को अभी आदर करें। तो करें ये हम जगत में जो कुछ देखते हैं वो स्वार्थ का तमाशा है, कहीं भी शुद्ध प्रेम नहीं है, और बिना इस प्रेम के कोई सुखी नहीं रह सकता, कोई शांति नहीं रह सकता। और ये भी प्रेम भी किसके प्रति हो? जिसके हम अंश हैं, पिता के अंश, पिता का अंश पुत्र होता है, ये बात ठीक है, कुछ अंशों में होता है किंतु पूर्ण रूप में नहीं। पूर्ण रूप में किसका अंश है? भगवान का। यदि उस भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो शुद्ध रूप में आत्मा का, तो हम सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण देकर के बतलाते हैं, मैं कहूँ यज्ञवल्क्य जी, देखो एक आदमी अपने स्त्री को प्यार करता है पुरुष, यदि स्त्री खूबसूरत नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, और घर बाल अच्छी तरह से संभाल नहीं सकती, दिन भर खाट तोड़ती है, पलंग तोड़ती है और कोई काम नहीं करती, घर भी नहीं देखती, पति की सेवा भी नहीं, पति से उलझ जाती है, उलझना माने
झगड़ा,
तो उसे प्यार होगा तो पति को? यदि खूब स्त्री सुंदरी थी, काम खूब करती थी और जल गई, उसका यहाँ पर सफेद हो गया, अब काम नहीं कर सकती, उसका पैर जल गया, पैर से उठ नहीं सकती, अब उसकी सेवा की जरूरत है दिन भर, पति क्या करेगा? कहेगा इससे घर का काम होता नहीं, तो कहेगा दूसरी से शादी करो। इसलिए स्वार्थ ही प्यारा है, यदि उस स्त्री के द्वारा नहीं होता तो हमारा काम नहीं चलेगा, दूसरा कर लेंगे। और ठीक पति भी खूब सुंदर था, उसकी नौकरी छूट गई, पैसा कमा नहीं सकता, और कहीं उसको लग गया, एक्सीडेंट हो गई, और एक्सीडेंट में उसका शरीर टूट फूट गया और कुबड़ा हो गया, कोई काम नहीं कर सकता, तो स्त्री क्या करेगी? पश्चात देश होता ना इंग्लैंड अमेरिका, तो एक दिन में ही बदल देती, वो एक्सीडेंट हुआ और उसको छोड़ दिया था, हम दूसरे के हैं, कभी नहीं करती है, किंतु आजकल वो जीवन नहीं है, पश्चात शिक्षा प्रवेश कर गई, होने से भी महाराज दशरथ जी ने 360 विवाह किस लिए किए? क्योंकि बेटा नहीं हो रहा था, तो जिसको बेटा होगा उसको प्यार नहीं करेंगे, तीनों को ही अधिक क्यों प्यार किया, तीनों को बेटे हुए, इस बात से नहीं है। हाँ, रामचंद्र जी को उन्होंने एक और दूसरी शादी की पक्के, इसलिए जगत में स्वार्थ को हम प्यार करते हैं, अपना जान स्वार्थ है। बेटा यदि बड़ा होकर के हमारा, चार बेटे हैं, चार बेटे में तीन बेटे अपने अपने ओहदे पर हैं, पिताजी को नहीं देखते सुनते, रुपये कमा रहे हैं, खूब कर रहे हैं, बड़े गुणी हैं, सुंदर हैं, सब कुछ हैं, और छोटा लड़का है वो कुछ कर नहीं सकता, पिताजी के दिन भर सेवा करता है, तो पिताजी क्या करेंगे, मैया क्या करेगी, अरे जो उन लोगों तो वो सब है, ये हमारा जो कुछ है तुम्हारे बात हुआ ना। और यदि वो भी न माने तो कोई दूसरा सेवा करता है तो खाने के, हम तिजोरी में अपना गहना रखते हैं, तिजोरी मैंने वहाँ बैंक में लॉकर किस लिए रखते हैं, गहने के सेफ्टी के लिए ना, अपनी सेफ्टी के लिए, हमारा गहना कहीं खो न जाए, कोई चुरा न ले, इसलिए उसको गहने के भलाई के लिए नहीं करते। इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं अपने सोच करके स्वार्थ से करते हैं, इस जगत में शुद्ध प्रेम नहीं। दूसरी बात, आप स्नेह करके भी क्या करेंगे, या तो आपको या पत्नी दोनों में से कोई एक को तो आगे जाएंगे, इसलिए इस जगत में शुद्ध प्रेम नहीं। इसलिए यदि भगवान के प्रति प्रेम हो और वो भी सच्चा प्रेम हो बिना स्वार्थ का, तो इससे आदमी सुखी हो सकता है और किसी काम से। इसलिए भगवान के भजन में और भगवान के भजन की सिद्धि में सुख है, उससे जीवन सुखी रह सकता है, और दूसरा ऐसा कोई चीज नहीं है। वो भजन कैसा हो, भजन भी बहुत प्रकार के हैं, एक साधन, एक भावावस्था, सिद्धावस्था, प्रेम की अवस्था। साधन अवस्था में पहले रुचि नहीं होती, साधन अवस्था में भी सात आठ प्रकार की स्थितियां हैं, श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन की आवश्यकता, गुरुकरण, और गुरुकरण करने के बाद, गुरु की सेवा करने के बाद में जो हरि कथा श्रवण होता है, कीर्तन होता है, नाम होता है, ये भजन क्रिया, इससे अनर्थ दूर होने पर फिर निष्ठा होती है, फिर रुचि होती है, रुचि के बाद में फिर आसक्ति, इसके बाद में भाव, ये इतने, पहला साधु संग, इसके बाद में कुछ श्रद्धा, फिर दूसरी बार साधु संग, दूसरे बार साधु संग के बाद में गुरुकरण, और गुरु करने के बाद में उनसे शिक्षा, और इसके बाद में धीरे धीरे भजन क्रिया आरंभ हुई। भजन जितना होता जाएगा अनर्थ दूर होता जाएगा, और फिर निष्ठा आएगी। इस तरह से सात या आठ सोपान उसके हैं, इसके बाद में सिद्धि अवस्था में उसके और भी बहुत से, भाव अवस्था में बहुत से सोपान हैं, और प्रेम के हो जाने पर स्नेह, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, वो भी आठ है, आठ स्तर, और एक एक स्तर में ये कितने कितने स्तर हैं, सब एक नहीं है। जब आदमी को प्रेम हो जाएगा, सिद्धि होगी, सब कुछ उसकी उपलब्धि है। हो सकता है कि इस शरीर में प्रेम की उपलब्धि न भी हो, दूसरे शरीर की अभी हो सकता है, किसी को श्रद्धा से निष्ठा होने में ही शरीर बदल जाए, किसी को निष्ठा से रुचि और आसक्ति होने में ही बदल जाए। एक जन्म में होने की, प्रेम तो एक जन्म में हो, इस शरीर में हो ही नहीं सकता, उसके लिए चिन्मय शरीर चाहिए, होने से ये चिथा फिसड़ा हो जाएगा, सरिता नहीं सकता, उसका विरह नहीं सह सकता, आनंद नहीं सह सकता। फिर ब्रज में जन्म हो, इसके बाद में तो ये श्रद्धा से आरंभ होगा। श्रद्धा माने क्या, प्राण जाय बरु वचन न जाय, प्राण जाय बरी बरु भक्ति न जाय, प्राण चला जाएगा, भक्ति नहीं जाएगा, नाम नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी का आदेश पालन करते हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे भी बढ़ पड़ेगा, उसमें आनंद की अनुभूति करता जाए। इस तरह से धीरे धीरे एक कीर्तन की ये सब कथाएं हैं, रुचिकर बनने के लिए, आत्म तत्व को बतलाने के लिए ये सब है।
ये जो आप लोग बताते हो एक बार
इसके बाद में जब श्रवण किया उनको कहा जे तुम जैसे मैं हूँ हमारे साथ में चलो और वानप्रस्थ में तुम हमारे साथ में रहो, ये सब सारी संपत्ति और ये सब कुछ तुमको दे दो। साथ ही साथ में चुटकी बजाते ही सारी संपत्ति और सब कुछ उसको तो उनके साथ में चली गई और भगवत आराधना में प्रतिष्ठित होने के लिए जैसे जो करना चाहिए भजन साधन करना उनके साथ और अंत में सुगति लाभ करके।
गीता में विश्वास में भी गीता सुनी थी पूरे, क्योंकि जब अर्जुन को कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे तो संजय को दिखा तो तभी उनका शोक और मोह दूर से नहीं हुआ।
मतलब तेन कृष्णानुशीलनम भक्ति, भगवान का हरि कथा सुनना भी भक्ति है, किंतु यदि अन्नाभिलाष रहा तो क्या होगा? उसके अंदर में एक भावना थी युद्ध बंद हो जाना ठीक नहीं है, युद्ध होना ठीक है, क्यों? शत्रु मारे जाए, जिस हमारे पक्ष में भीष्म जी हैं, द्रोण है, कर्ण है और हजारों महारथी लोग हैं, अश्वत्थामा है, बहुत से लोग हैं, पांडवों में बहुत कम है, कृष्ण है भी तो अश्वत्थाम, इसलिए युद्ध हो जाने से हमारी जीत निश्चित है और ये सब मारे जाएंगे पांडव लोग और निष्कंटक राज्य हमारे बेटों को मिल जाएगा। वो इसलिए सुन रहा है कि हमारे बेटों पर कोई कष्ट तो नहीं आ रहा और पांडव लोग रोज रोज मर रहे हैं, तो इसलिए वो सुन रहा है। और जब देखा कि हमारे बेटे ही मर रहे हैं और पांडवों की धीरे धीरे जीत हो रही है, वो ये नहीं चाहता कि भागवत में कृष्ण ने, गीता में कृष्ण ने जो उपदेश दिए ये नहीं सुनता। वो क्या सुनता है? आज ये मर गई, ये मर गई, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हाय, वो तब तो उसके काम में नहीं। और अर्जुन किस लिए सुना? आप कहिए हमारे लिए क्या कल्याण है, मैं आपका शिष्य हूँ सुनता हूँ, वो शिष्य होकर के सुना। जो कोई गुरु की बात शिष्य बन करके सुनेगा उसका वो फल मिलेगा, और जो शिष्य बन करके नहीं सुन रहा है, कौतूहल के लिए सुन रहा है, उसका क्या होगा? कौतूहल पूरा हो जाएगा, खत्म हो गया वो, इसलिए उसका सुनना सुनना नहीं है। मैं शिष्य हूँ, शिष्य माने क्या? शिष्य माने और आप जो कुछ कहेंगे उसका पालन करूँगा, जा करके आपके वचनों को मैं पालन करूँगा, ये दृढ़ता के साथ हूँ। और शिष्य नहीं होगा ना तो ये कितने आते हैं ऐसे जैसे, और जो शिष्य हो गए हैं उनके लिए थोड़ा सा कह देंगे ये करना है, उनके लिए कहूँगा ये 16,000 नाम करना है, 50,000 नाम करना है, तुमको प्याज लहसुन छोड़नी है, वो छोड़ देगा। और जिसके अंदर में वो चीज़ शिष्य नहीं है वो कहने वाले तो लाखों आते हैं, नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र शिष्य होकर के नहीं सुना पालन करने, वो तो कौतूहल के बस में सुन रहा है, अरे कहीं पांडव लोग हार जाएं और सारी संपत्ति हमारे बेटे। और जब उल्टा होने लगा तो बड़ा दुखी हो गया, उसका घड़ा हृदय रूपी घड़ा कामनाओं से भरा पड़ा है, उसमें भक्ति जाएगी कहाँ? और अर्जुन ने निकाल दिया सब कुछ, आप जो कुछ कहेंगे वही करूँगा, उसी को भरूंगा अपने हृदय। असल में अर्जुन को पहले ही कई वो चीता है।
बोलो। एक दफे ना डिबेट हो रहा था तो वहाँ पर मतलब कोई संस्कार नहीं थे, वो लोग बोल रहे थे कि संसार में कोई भी प्राणी मतलब काम वासना से दूर नहीं है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मोर मतलब जैसे काम वासना से दूर है, तो कहते हैं वो कोई प्रूफ लाओ कौन सी पुस्तक में लिखा है कि मोर काम वासना से दूर है।
इसलिए कि वो अपनी स्त्री के साथ में नहीं रहता।
नहीं कहते कौन सी पुस्तक में लिखा
है, पुस्तक में शरीर लिखे होती है।
कहते मेरे को लिखवा के ला के देना।
हाँ पुस्तकों में भी लिखा है, ठीक है मैं दिखला दूंगा। ऐसा कहा, किंतु संसार में ऐसे बहुत हैं जिनमें कामना वासना ऐसे संत लोग हैं, लाखों एक दो नहीं, नहीं तो फिर चल नहीं सकते।
क्या
कभी ऐसी नहीं है, स्त्रियों में भी पुरुषों से उनका काम काज में भी
बोली। मैं अपने महाराज जी के पास जाऊंगी तो मैं लिखवा के लेके आऊंगी, फिर आप लोग उस पुस्तक में से देखना।
जोर से बोलो। उपनिषद की कथा आप सुना रहे थे ना, जैसे याज्ञवल्क्य जी और तो कहा गया कि उपनिषद तो वेदों के ही अंग होते हैं और वेद जितने माने जाते हैं मतलब जो समय की परिधि से परे हैं या सृष्टि से भी पहले के ही हैं, तो ये जो घटनाएं होती हैं जो उपासना के साथ, ये तो किसी समय पे जैसे ये घटना कभी हुई होगी कि वो जा रहे हैं छोड़ के और इस समय उन्होंने ऐसे कहा।
उसमें मंत्रों के जो ऋषि हैं वो भी नित्य हैं, उन्होंने अनुभव किया, उनके नाम पर वो रख दिया गया, इसलिए वो सामयिक नहीं है। जैसे रामचंद्र जी इतिहास में आए हैं और से मालूम पड़ता है कि एक समय में थे त्रेता युग में, किंतु जिस समय की ये बात अभी हो रही है ये त्रेता, उसके पहले जो सबसे पहले त्रेता है, सबसे पहला त्रेता उसको समझो, पहला त्रेता कब है इसे अभी। इसलिए राम के जितने भी परिकर हैं जटायु से लेकर के हनुमान भीम नकुल और सब जितने भी परिकर हैं रावण इत्यादि हैं, ये भी पंचम वेद कहलाता है, रामायण महाभारत, ये भी वैसे ही नित्य हैं। आज से करोड़ वर्ष पहले, करोड़ों से करोड़ वर्ष ऐसे ही कथा है ये, तो उसमें भी जटायु आया होगा, रावण आया होगा, मेघनाथ आया होगा, ये सब भी आए हैं, इसलिए ये सभी चीजें वैसे ही हैं, ये समय के आधार पर नहीं है। हो सकता है कि जो साधक जो अभी याज्ञवल्क जैसे दिख रहे हैं, मैत्रेय जैसे, उन नामों पर ये नाम रख दिए गए हों और वो साधन करने वाले हों, और वो जो याज्ञवल्क है मूल में वो ठीक है। जैसे नंद यशोदा जी साधक नहीं है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि वो द्रोण और धरा तपस्या करके नंद और यशोदा, किंतु ये नंद यशोदा साधक हैं, उस नंद यशोदा में मिल गए और ये साधारणों को बाल, ऐसे ही समझो।
जिसमें जिन
विद्वान
बदलते हैं ज्ञान अखंड है, अनुभूति शिक्षा संस्कृति सब एक अखंड है। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में उसी के आधार पर सारी सृष्टियां करते हैं,
वेदों में है ब्रह्मा का। ये कौन से ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा उवाच जो कहा गया, और वही ब्रह्मा के मुख से वेद जो हुआ, तो वही जो ब्रह्मा जी करें जो ब्रह्मा उवाच, तो ये कौन से ब्रह्मा, ये ब्रह्मा पदवी है, ये वेदों की पदवी है। इसलिए वो भी नित्य है, ये ब्रह्मा नित्य नहीं है, इनकी आत्मा नित्य है, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है। यह था अनंत की जय, ऐसे नहीं समझ में आएगी, भजन करने के प्रभाव से कुछ कुछ आएगी। बोलो अरे उधर में देख रहे हैं ना, भोग भोग लगाया,
मानने वाला और मरने वाला है, इसमें से कोई भी कर्ता नहीं है, कर्म
उसके कर्म फल है।
इस हिसाब से तो कोई भी किसी को मान रहा कहे कि भाई मैं तो दोषी हुई नहीं,
वो तो ठीक है। और हमने उसको 5 चम्मच और जोड़ दिया, इसमें हमारा भी दोष नहीं। फिर क्या कहेगा वो? मान लें कि तुमने हमको 1 थप्पड़ मारा और हमने तुमको 10 थप्पड़ जमा दिए और तुम जमीन पर लेट गई, गिर गई। हमने कहा जी भाई इसमें हमारा भी तो दोष, तो इस तरह से चलता रहा झगड़ा। ये कर्म फल मारने वाला ऐसा आदमी जो समझ लिया है वो नहीं मारेगा, वो कहेगा जैसे अच्छा मार दिया तो ठीक है, ये हमारा कर्म फल है, हमको इसका प्रतिशोध नहीं लेना है, यहाँ तक तो ठीक है, और तुमने मारा तो इसकी थ्योरी को तुमने ग्रहण नहीं किया। जब उसका दोषी नहीं है तो तुम मारेगी क्यों? जब ये समझेगी जैसे उसने मारा है, हमारे कर्मों का फल हमको मिल गया, अब हमको इसका रिवेंज नहीं लेना है क्योंकि अपने कर्मों का फल हमें मिला है, वो मारने वाला तो है नहीं, तो तुम नहीं मरेगे। और वो भी ऐसा यदि समझ लिया तो वो कभी मारेंगे। इसलिए ये इसका ये मतलब हुआ कि वो ठग बदमाश, वो उस पर थ्योरी में विश्वास नहीं है। तो फिर थ्योरी पे विश्वास कहाँ रहा? क्यों मैं उसे मर्डर करने जा रहा, क्यों क्यों बतलाओ? अच्छा तो द्वेष हुआ तो इसका मतलब है जैसे कर्म थ्योरी पर उसको विश्वास नहीं है, उसने इसका बुरा किया है, उसको ये है। यदि उसको ये होता है कि अपने कर्मों का फल हमको मिल रहा है तो द्वेष नहीं होता, तो ये झगड़ा नहीं है।
आपने कहा था बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आत्मा सच्चिदानंद है, नित्य है, चेतन है, इसको तो कष्ट और दुख नहीं हो सकता। आपने अपने गुरु जी का उदाहरण लिया, वो कहते हैं कि घड़ी है, घड़ी के ऊपर कपड़ा रख दिया, अब वो तो आदमी कहेगा कि घड़ी रुक गई है, चल नहीं रही है, लेकिन देखने वाला जानता है इसके अंदर घड़ी है। ऐसे ही उत्तम पुरुष समस्त आत्माओं समस्त व्यक्तियों के अंदर उसके अंदर आत्मा चेतन तत्व को देख लेते हैं और वो देखते हैं अन्वय या वतीरे के रूप में सभी कृष्ण की सेवा में लगे हैं। इस चीज को ग्रहण करते करते फिर दुनिया के अंदर अगर हम चेतन आत्मा को अकर्ता और उसकी उसका कोई मोक्ष भी नहीं है, आपने ये कहा था उसका बंधन भी नहीं है, उसका मोक्ष भी नहीं है, तो फिर ये जो कष्ट भोगता है, कष्ट दुख भोगता है, वो कौन है?
ये मैंने किसके लिए कहा था? रियलाइज सोल के लिए कहा था, जिसने आत्मा का आत्मज्ञान लाभ कर लिया है, अनुभूति हो गई है, वो केवल ऐसा। आप जो अभी शंका कर रहे हैं उसमें शंका का उनको स्थान नहीं है क्योंकि वो रियलाइज हैं, वो देख रहे हैं। अब आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं तटस्थ हो करके, जिसकी अनुभूति नहीं है आप प्रश्न कर रहे हैं, वो नहीं प्रश्न ऐसा कर सकते क्योंकि ऐसा देख रहे हैं। और आप अभी थ्योरी को समझना चाहते हैं, इन दोनों में ही अंतर है, इसलिए आपके लिए तो बड़ा जरूरी है। तो बात वही थी, इसको कह दिया, इसको भजन के द्वारा इसको साफ किया। बहुत सी चीजें हैं जो आत्मा अजर अमर है, भगवान का आदर्श है, इस चीज को अधिक तर्क के द्वारा मत समझने जाओ, इसको अनुभूति के द्वारा समझने की। जितना ही तुम्हारा हरि नाम शुद्ध होता जाएगा, इन चीजों की, ट्रांसेंडेंटल चीजों की, नित्य वस्तुओं की अनुभूति तुमको धीरे धीरे हो जाएगी। कृष्ण भगवान हैं, आप कह सकते हैं कृष्ण भगवान हैं? कैसे कह? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। आप अपनी भूति से कह रहे हैं, अनुभूति से नहीं कर रहे हैं? जिस समय अनुभूति के द्वारा जब कहेंगे ना, तो उसके आपके वचनों में इतना बल होगा। अब इस चीज को अब ये थ्योरी के रूप में गुरु ने कहा, अब इसको आपको हरिनाम के द्वारा, भजन के द्वारा, अपने उपासना के अभ्यासों के द्वारा इसको रियलाइज करना। आपने ये कभी देखा कि किसी को सांप ने काट दिया? मंत्र जानने वाला व्यक्ति कोई मंत्र पढ़ करके ऐसे कर दिया और उसका सांप का भी कर दिया और वो मंत्र आपको बतला देता है और आप कहेंगे नहीं होगा, क्यों क्यों? मंत्र की शक्ति को सिद्ध नहीं आपने किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रहस्य में पहले ही अब चैप्टर के पहले ही भागों में लिखा हरिनाम कैसे करना चाहिए, कैसे हरिनाम होना चाहिए जिससे कि इसकी अनुभूति हो, इसकी सिद्धि हो। हम लोगों को जैसा जागते सोते हुए खाते पीते आराम के साथ में करते हुए उस निष्ठा से हरिनाम नहीं करते। हरिनाम करने के लिए एक निर्बंधनी मति होती है, निर्बंधनी मति। प्रभु कहे कोही नाम ए महामंत्र इहा जप गिया सबे होया निर्बंध। भागवत के श्लोक में भी निर्बंध शब्द आया। जिसकी हरि भजन में हरि नाम में निर्बंधनी मति है तब तो उसके भजन में सिद्धि होगी, नाम में सिद्धि होगी। कृष्ण कहने के साथ में कृष्ण का स्वरूप आएगा, उसकी उपलब्धि होगी। तो उसी तरह से उसी क्रम से प्रोसेस से आपको श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति इत्यादि क्रम को पार करते हुए करना है। निर्बंधनी मति हो रही, निर्बंधनी माने हमको 100,000 नाम करना ही है मरुपज। पहला ऐसे इस नाम को करूंगा जो हमारा मन एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ कृष्ण आपकी कृपा है, हमारा हृदय आपका यह नाम शुद्ध हमारे जीवन। ये दो। तीसरा गुरु से दिया हुआ मंत्र हो, ऐसे तैसे मंत्र से नहीं होगा। जिसने प्रैक्टिस करके इसकी सिद्धि किया है उसे दिया। चौथी की उस मंत्र का तात्पर्य आपको मालूम होना चाहिए। अब अच्छा उस मंत्र का देवता कौन है, इसको कहते हैं न्यास। ये मंत्र का देवता है, ये हमारा उपास्य है। इस मंत्र के द्वारा उस चीज को सिद्ध करना है, न्यास हुआ। और उस मंत्र का जो देवता है उसमें प्रपत्ति होगी। प्रपत्ति मैंने क्या, शरणागति दूसरी चीज है, शरणागति प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन तीन स्थितियां है। तीनों एक चीज नहीं, अभी हम लोग तो एक ही ले लेते हैं, नहीं जानते हैं। प्रपत्ति मैंने कहते हैं कि ये जो मंत्र का अधिष्ठाता है, जो भगवान है या यह स्वरूप है, ये हमारी सब प्रकार से रक्षा करेगा और जो चाहेंगे ये इस चीज को देगा। इसके चरणों में हमको प्रपत्ति ग्रहण अपना, इसके चरणों में हम न्योछावर करते हैं। इसके बाद आएगी शरणागति। शरणागति के 6 अंग है, 6 अंगों को लेना पड़ेगा। हमारा ये पालक है, रक्षक है और इसके भजन के अनुकूल हमको ग्रहण करना पड़ेगा, अनुकूल अप्रतिकूल को त्याग कर लेना पड़ेगा। और ये हमारी रक्षा करने वाला है, इसको हम रक्षक के रूप में वर्णन करते हैं और अत्यंत दीनहीन होकर के कार्य पढ़ने के साथ में उसके चरणों में जाएंगे और अपने हृदय तक को भी समर्पण कर। ये हुआ शरणागति। और समर्पण हुआ मानस देह गेह जो किछु मोर, हमारा यह शरीर तन मन धन प्राण आत्मा जो कुछ है, आज मैं उनके चरणों में सब कुछ आत्मा की अनुभूति के साथ में, मन की अनुभूति के साथ में। और पहला वाला प्रपत्ति में अभी ज्ञान नहीं है, प्रपत्ति में ज्ञान नहीं है, किंतु जो कुछ है वो कर रहा है उतना ही तक। और इसमें शरणागति के बाद में ये है, शरणागति का अंतिम जो है वो है आत्मनिवेदन। और श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सक्षम, ये आत्मनिवेदन, ये उत्तम सबका। इसका पूर्ण जो स्वरूप है ये है गोपी, उसका आंशिक प्रदर्शन आप हनुमान जी में दे सकते हैं, उनमें सभी पूर्ण है। गोपियां में पूर्णतम है, प्रहलाद महाराज जी में ये कुछ देख सकते हैं, अम्बरीश महाराज जी में भी कुछ कुछ देख सकते हैं, ये साधक लोग हैं, वो लोग हैं सिद्ध। इस तरह से इन पंचांग और जो पहले कहा ये सब मिला करके जब भजन करेंगे तब ये सिद्धि होगी, ऐसे में तब फिर भाव अवस्था आएगी, तब इसलिए ये सब चीजों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए तब साधन के लिए आगे बढ़े। आपके हृदय में संसार के अभी हमारी स्त्री का ये कुछ असुविधा है, यदि मैं नहीं रहूं तो हमारी बच्चियों को कौन देखेगा, यदि कष्ट में है आपकी चिंता अपने आप आएगी, आपने जिस घर को किराए में लिया है या घर आपका है और कोई जबरदस्ती ले रहा है आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे क्या करेंगे, अभी आपको कुछ नहीं काम करते हैं अटेंडेंस देने के लिए नौकरी में जाना ही पड़ेगा, वो तो भगवान की कृपा से आप बच रहे हैं, अभी ये घर का काम नहीं करेगी चुप जा बैठ जाए कहे जाओ अपने बाप के पास में रहो मैया के पास न, है कि नहीं, और घर में भी जाकर के कुछ नहीं करेगी इनका भी नहीं छोड़ेगी तो वो लोग कहेंगे जा अपने ससुराल में हमने जो कुछ हमारा कर्तव्य था एक दो वर्ष चार वर्ष पांच वर्ष रखें इसके बाद में उपेक्षा करें, मैया पाप नहीं करेंगे तो भैया करेगा। इस तरह से एक निष्ठ होकर के यदि हम करेंगे तब साधन होगा, प्राण जाएगा चाहे साधन हमारा एक उसके लिए सब सर्वस्व। बोलो क्या था,
इन बातों से कभी कभी अपना जो मूल्यांकन किया जाता है।